لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأواليل، العبد المؤيد والمنصور المسدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم وتطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تعطيهم بغتة فقد جاء أشراطها. 1442 ہجرہ کا ایام عزا، آج 8 محرم کی تاریخ ہے. جعفری سینٹر اٹلانٹا میں ہماری مجالس کا ٹاپک امام زمانہ کے کانٹیکس میں ہماری ڈیوٹیز اور ہماری ریسپانسیبلٹیز. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس کی تلاوت میں نے یسٹرڈے کی مجلس میں بھی کی تھی، اور جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظہور امام اچانک سڈنلی نہیں ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے بلکہ فقط جا اشراتہا، اس کی سائنز تو آنا شروع ہو چکی. یہ 1400 سال پہلے کی آیت ہے. یعنی ان ادر ورڈز قرآن کہہ رہا ہے کہ بس تیار ہو کے بیٹھ جاؤ، ظہور امام کی سائنس شروع ہو چکی ہیں، اب وہ کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی 2 دفعہ یہ بات عرض کی تھی، اور بہت مشہور بات ہے، علماء تو اس کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ ظہور امام، ری اپیئرنس آف امام زمانہ، اسے قرآن کریم نے اور احادیث معصومین میں قیامت بھی کہا گیا. ایک تو وہ فائنل ڈے آف ججمنٹ ہے، روز قیامت، جس دن تمام انسان آدم سے لے کے اس دن تک کے اپنی قبروں سے اٹھا کے لائے جائیں گے. لیکن ظہور امام، جس کے اندر سلیکٹڈ مومنین اور سلیکٹڈ منکرین، وہ زندہ کر کے لائے جائیں گے، جسے ہم رجعت کہتے ہیں. اس میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور دنیا سے گزر چکے ہیں وہ واپس آئیں گے، لیکن سب نہیں آئیں گے. مومنوں سے بھی بہت ہی سلیکٹڈ قسم کے مومنوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ، رسول، امام اور اسلام کا انکار کرنے والوں میں سے بھی بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کو. لیکن بہرحال مردے اس میں بھی زندہ ہوں گے، اور جو مردے زندہ کیے جائیں گے ان کے حساب کتاب کا بھی ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوگا. تو قیامت وہ ہے جو ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، جو ہمارے اصول دین میں شامل ہے، اور یہ ظہور امام بھی قیامت ہے، البتہ یہ اصول دین میں شامل نہیں ہے. چنانچہ اگر کوئی یہ انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یعنی اس بات کو نہیں مانتا کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد مردے जिंदा किए जाएंगे, तो वो गुनाहगार हो सकता है लेकिन ना काफिर कहलाएगा ना आउट ऑफ शिया, आउट ऑफ शिया। खैर, अब ये बात तो इसलिए आ गई कि कयामत इमाम जमाना के जहूर के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसी तरह से इमाम जमाना को, उनके जहूर को, उनकी साइंस ऑफ जहूर को, उनके लिए हमें और आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए मौत, मौत से बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया है या तशबीह दी गई। देखिए, इमाम जमाना का जहूर तो इस वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ही मर्तबा, ना उससे पहले उसकी कोई एग्जाम्पल है ना उसके बाद कोई ऐसी एग्जाम्पल होगी, और वो टाइम अभी नहीं आया है। लेकिन मौत तो एक ऐसी चीज है जो हर घर में है, हर खानदान में है, हर शख्स का अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, आप चारों तरफ देखते ही रहते हैं। तो ऐसी चीज जो आदमी अच्छी तरह से समझता हो उसके जरिए से दूसरी बात को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ज़हूर इमाम के लिए मौत को बहुत सी रिवायतों के अंदर मिसाल बना के पेश किया गया। अब मसलन मौत के हवाले से एक बात कन्फर्म, और वो ये है कि ये आकर रहेगी। मसलन एक बच्चा है जो मां के पेट में, अभी उस बच्चे की क्रिएशन हुई है, कहा जाता है कि 4 महीने के बाद बच्चे में रूह पड़ती है या जान आती है। अभी 4 महीने नहीं हुए, 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी, रूह पड़ गई, जिंदा हो, जिंदगी आ गई। अब ये जिंदगी आने के बाद से लेकर इसकी जिंदगी के जितने फेजेस है ना, वो सब कंफर्म कोई नहीं, सब शक वाले, पता नहीं ये बच्चा जिंदा पैदा हो के मुर्दा पैदा हो, मरा हुआ बच्चा जिंदा भी पैदा हो गया, तब भी अब यकीन के साथ तो नहीं कह सकते है ना कि ये जवान होगा। अगर वो जवान हो भी गया तब भी हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते है ना कि वो मिडिल एज में जाएगा, वो मिडिल एज में पहुंच गया तब भी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते है ना कि ये बूढ़ा होगा, बूढ़ा भी हो गया तब भी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं कि वो 80 में मरेगा कि 90 में मरेगा कि 100 में मरेगा। मां के पेट में बच्चा पैदा जिंदा हुआ, वहां से लेकर उसके मरने तक जितने भी उसकी लाइफ के फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, मरहले, सब के सब शक वाले। गेस किया जा सकता है ना, एक इंसान चारों तरफ अपनी फैमिली को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि जी इस फैमिली में 60s तक लोग जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं 80s, लेकिन यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अगर यकीन के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ कोई बात कही जा सकती है तो वो सिर्फ एक, और वो ये है कि ये बच्चे को मरना जरूर, जो माँ के पेट में पहली सांस ले रहा है इसको एक दिन मौत का सामना करना, चाहे ये जिंदा पैदा हो के ना हो, बचपना इसका गुजरे के ना गुजरे, जवान हो के ना हो, मिडिल एज में जाए के ना जाए, बूढ़ा हो के ना हो, मरना जरूर। वाहिद कंफर्म चीज जो हर आदमी कह सकता वो ये है कि सांस ले ली है, जिंदगी आ गई है, तो मौत यकीन है। इमाम जमाना के लिए भी हमसे यही कहा गया कि अल्लाह ने इस दुनिया को क्रिएट किया, अब अंबिया भी आए हैं, इम्मा भी आए हैं, मुख्तलिफ सिस्टम भी आए हैं, इंसान बहुत तरक्की कर रहा है, गारों से निकल, गारों में रहने वाला इंसान आज स्काई स्क्रैपर में रह रहा है, दुनिया में रहने वाला चांद और मरीख और पता नहीं कहां कहां जा रहा, लेकिन दुनिया का फ्यूचर क्या है, इंसान का फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कन्फर्म तरीके से कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ और हो के ना हो, लेकिन इमाम जमाना का जाहिर होना यकीनी बात है। चुनाचे रिवायत यह है कि नहीं, कि अगर कयामत में एक दिन भी बाकी रहेगा तो अल्लाह उस दिन को भी इतना लेंदी कर देगा कि इमाम जमाना जाहिर होके वो अपना पूरा सिस्टम यहां पे कायम करे। उधर मौत यकीनी है, इधर कहा गया कि इमाम की का रीअपेयरेंस और इमाम का जाहिर होना यकीनी। और कई तरीके से फिर इसको कंपेयर किया गया। साइंस ऑफ जहूर के हवाले से एक छोटी सी रिवायत मौत की पढ़ ली। अल्लाह के अंबिया में एक बहुत अहम नबी हजरत याकूब हैं। ये बनी इसराइल के जितने यहूदी अंबिया हैं वो उसी सिलसिले में आए। इसराइल बल्कि नाम ही जनाब याकूब का है तो उनकी औलाद सन ऑफ इसराइल हजरत याकूब। अच्छा, करबला के रेफरेंस में भी हजरत याकूब का जिक्र बहुत होता है। जब कभी कोई सवाल करता है चौथे इमाम से कि मौला कब तक मातम करेंगे तो यही जवाब तो देते हैं कि याकूब ने कितने अरसे मातम किया। क्योंकि आज की मजलिस में भी मसाइब आका हुसैन के एक बेटे के हैं और तीन दिन पहले भी मसाइब आका हुसैन के एक बेटे के थे। तो हजरत याकूब का ही जुमला कोट करते हैं कि एक बेटा था वो खो गया। अच्छा, 12 बेटे थे उनमें से एक बेटा खो गया तो इतना रोज। ये जनाब याकूब करबला के कॉन्टेक्स्ट में भी इनका जिक्र बहुत होता है। आजादारी की दलीलें कैसे हम प्रूफ करें कि आजादारी इस्लाम में पार्ट है अगेंस्ट इस्लाम नहीं। हजरत याकूब बहुत सारे उनके हालात हैं तो पूरी बनी इसराइल की चेन जो है वो हजरत याकूब तक पहुंचती है। लेकिन एक छोटी सी बात, एक मरतबा हजरत याकूब मलकुल मौत से मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, ये मलकुल मौत यानी एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता, अंबिया और रसूलों को रेगुलर विजिट करने जाता, उनकी ज्यारत करता, उनको सलाम करता। और इस किस्म के और बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन अब फिलहाल कि वो हजरत याकूब को विजिट करने गया, उनकी जियारत की, रेगुलर जाता है, मुख्तलिफ टॉपिक पे बात होती है। हजरत याकूब ने कहा कि ऐ मलकुल मौत, ये तो मुझे मालूम है कि मौत का आना यकीनी, लेकिन अच्छा अब ये नबी जब इस किस्म की बात कर रहा है तो माजल्ला या नऊजु बिल्ला वो हमारी और आपकी तरह से नहीं, ये तो हमें और आपको समझाने का एक तरीका, ये एक वे ऑफ टीचिंग है। कहा कि ऐ मलकुल मौत, मुझे पता है कि मौत का आना तो यकीनी है, कंफर्म है, लेकिन भाई मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पास जब आओ तो सडनली नहीं आओ, पहले से मुझे मैसेज भेज दो। अभी हम और आप भी कभी कभार अपने ऐसे किसी मेहमान से कहते हैं कि भाई आइएगा जरूर, बहुत दिल चाहता है, लेकिन अचानक नहीं आइएगा, पहले से इन्फॉर्म करके आइएगा ताकि हम उसके एतबार से प्रिपरेशन कर सकें। तो कहा, बिल्कुल लॉजिकल बात कही, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे मौत ना आए, मेरी रूह ना निकालना, सिर्फ इतनी बात के सडनली नहीं आना, बल्कि मुझे टाइम पीरियड देना, अब तुम्हारा मैसेज आ जाए मेरे पास, मैसेंजर तुम्हारे आ जाए कि तुम आने वाले हो, ताकि मैं जरा सा उसके एतबार से प्रिपरेशन कर लू। मलकुल मौत ने कहा, या नबी खुदा, ओके, आपका ऑर्डर है मानना। और फिर वो वक्त आया कि हजरत याकूब की मौत का वक्त आ गया, मलकुल मौत पहुंच गया घर में। हजरत याकूब ने देखा, कहा मलकुल मौत इस वक्त क्यों आए, कहा आपकी रूह कब्ज कर में, कहा यह अचानक आ गए, मेरा तुम्हारा कमिटमेंट था कि तुम मुझे पहले से इन्फॉर्म करोगे और मैसेज दोगे। कहा कि या नबी खुदा, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया है और आपको मैसेज दिया, और एक भी नहीं कई मैसेज दिए। हजरत याकूब ने कहा, कौन सा मैसेज, मुझे कोई मैसेज ना मिला। कहा कि या नबी खुदा, आपके सर के बाल सफेद होने लगे, ये मेरा पहला मैसेज था कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाइए। आपकी आई साइट वीक होने लगी, ये मेरा दूसरा मैसेज था कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाइए। आपके बदन की शक्ति या वो जो पावर्स हैं वो कम होने लगी, ये मेरा तीसरा मैसेज था कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाइए। वो जितने भी साइंस बुढ़ापे के होते हैं ना, कई इनमें से हर एक मेरा मैसेज है कि मैं आने वाला हूं, अब आपको मेरे लिए प्रिपरेशन करना। अच्छा ये अब जो जुमला मैं कह रहा हूँ ये वर्डिंग मेरी, ये मलिकुल मौत की नहीं है, वो इतने इंसल्टिंग वे में बात नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट ये यार अब ये खुदा मैंने तो मैसेज पे मैसेज भेजे, आपने ही कोई अटेंशन नहीं दी, नहीं इग्नोर करते रहे। अब ये मौत के लिए कहा गया है कि ये सब मौत के मैसेज होते हैं कि मौत आने वाली है तैयारी कर लो। इमाम जमाना के लिए भी कहा गया कि इसी तरह से बहुत सारी साइन आती है, वो मैसेज है कि इमाम आने वाले हैं तैयारी कर लो। हम और आप उसको इग्नोर करते हैं, तवज्जो ही नहीं देते। जैसे कल मैंने अर्ज किया था मस्जिदें भर जाएंगी लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी, बल्कि आजकल तो आलम इस्लाम की कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि जहां से लोगों को मिसगाइड करके गुमराह किया जाता। हमारे खिलाफ भी कुफर के फतवे जो लगते हैं तो उनका मेन जो सोर्स होता है वो मस्जिदें होती, और हम भी जो आपस में एक दूसरे को काफिर बनाते हैं, ये काफिर काफिर का खेल खाली दुश्मनान अहले बैत नहीं करते, मुहिबान अहले बैत भी आपस में बहुत ज्यादा इस ये खेल में हिस्सा लेते हैं। इसके पास वो काफिर है, उसके पास ये काफिर है, लेकिन ये आज का सब्जेक्ट नहीं। बात ये हो रही है कि साइंस ऑफ जुहूर जो है ना, ये वो मौत वाले की तरह से एग्जाम्पल दी गई कि मजा लेने के लिए साइन मत सुना करो। अच्छा वो मौत की जो चीज है वो हम मजा लेने के लिए नहीं सुनते, आई साइट कमजोर हो गई हम परेशान हो जाते हैं, बाल सफेद हो गए हम कलर लगाने की फिक्र में लगते हैं, जिसम में ताकत कम हो गई तो हम मुख्तलिफ किस्म के विटामिंस और मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन इमाम जमाना के बारे में हर आदमी कहता है मौलाना ऐसी साइन ऑफ जुहूर बताइए जो जरा इंटरेस्टिंग हो और जिसको सुन के मजा आए। ये मजे वाली बात नहीं है, ये प्रिपरेशन की बात है। तो मौत के हवाले से चौथा, अब मैं बता रहा हूं कि मौत को और इमाम जमाना को किस तरह से कंपेयर किया गया। मौत के हवाले से चौथा मैसेज जो आज के मजलिस में मैं दे रहा हूं, और वो ये कि खाली मौत सुना मत करो कि मौत आने वाली, खाली अपनी जबान से ये ना कहा करो कि भाई मरना तो हक है हर एक को मौत मरना, इस पर यकीन करो। यकीन, यकीन का मतलब क्या है कि फिर अगर मरना बरहक है तो उसकी तैयारी करो। वहां तो फिर भी कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाते हैं जो तैयारी करते हैं। देखिए हमारा ये विल लिखना ये भी एक तैयारी, बहुत इंपॉर्टेंट एक इस्लाम का हुक्म है, लेकिन अय्याम अज़ा की इन मजालिस में तो टाइम नहीं है, शायद आशूरे के बाद जो रिमेनिंग 2 मजालिस होंगी उसमें कुछ बातें मैं जरा सी फिकही और शरई भी करूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी सी बात। फिर मौत की तैयारी के हवाले से आदमी कुछ इबादतें कुछ, अच्छा कुरान करीम की एक आयत जो अगरचे हज के लिए है लेकिन वो मौत के लिए भी है और वो इमाम जमाना के लिए भी है, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, सामान सफर तैयार करो और बेहतरीन सामान सफर तकवा है। आयत तो हज के कॉन्टेक्स में आई है, लेकिन हज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मौत वो सफर है जिसके लिए तकवा चाहिए। अब वो रिवायतें अपने दिमाग में ले आइए कि रात के अंधेरे में रावी इमाम मासूम को देखता है कि अपनी कमर पे बोरी रख के वे जा रहे हैं, मौला कहाँ मुझे बताइए मैं ये सामान ले जाऊं, कहा कि नहीं मैं तो ट्रेवलिंग कर रहा हूं, ये ट्रेवलिंग का सामान है। और रावी यही समझा कि इमाम कहीं शहर के बाहर जा रहे हैं, 2 दिन के बाद देखा कि इमाम तो मस्जिद नबवी में बैठे हैं। मौला अब आज के जमाने में तो आप 2 घंटे में ट्रेवलिंग करके आ सकते हैं, पुराने जमाने में तो मुमकिन नहीं, मौला वो तो आप ट्रेवलिंग के लिए जा रहे थे, गए नहीं क्या? इमाम ने कहा ट्रेवलिंग से तुम क्या समझे, एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं, इस दुनिया से आखिरत की ट्रेवलिंग है, वो उसका सामान था जो मैं लोगों की मदद के लिए रात के अंधेरे में जाके उनके सरहाने उनकी जरूरत की चीजें रख के आता हूं। देखिए मौत एक सफर का सामान तैयार करो, और यही इमाम जमाना के लिए सामान तैयार करो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो, यह असल मकसद होता है ज़हूर इमाम की निशानी होगा। चले बास मोमिनीन के ख्वाहिश के ऊपर एक निशानी वो पढ़ रहा हूं, जिस जमाने में मैं बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, एक जमाने में ये निशानी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, यहां तक कि मेरे नाम से बहुत मशहूर भी हो गई थी। जहूर इमाम मौला ने मस्जिद कूफा में एक मरतबा खुतबा दिया और उस खुतबे के एंड में थोड़ी सी साइंस ऑफ जहूर बयान की। पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यह मौला का एक फेवरेट टॉपिक था। जब वो साइन ऑफ जहूर कंप्लीट हो गई तो एक बार मौला के एक बहुत ही क्लोज सहाबी, हर एक आदमी जानता है क्योंकि उनकी दुआ तो हर आदमी एवरी थर्सडे पढ़ता, कुमैल इब्ने ज़ियाद, जिनको मौला ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया था मौला के खिलाफत के जमाने में, इन्हीं के पास बैतुल माल था। वो मौला के पास आया और कहा कि मौला जिदनी बयाना, मुझे मजीद कुछ डिटेल चाहिए। अच्छा, एक किताब में रिवायत इस तरह लिखी, एक दूसरी किताब में रिवायत इस तरह है, आगे जाके दोनों रिवायतें एक हो जाएंगी कि एक बार कुमैल कहने लगे कि मौला मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि मरने के बाद मेरी कब्र कहां बनेगी। मौला ने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूं। ये कह के कुमैल का हाथ पकड़ा और उनको कूफे से बाहर एक जंगल और डेजर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया। अच्छा, अब वो जो पहली रिवायत है कि कुमैल ने कहा मैं कुछ और साइंस सुनना चाहता हूं, जो आपने खुतबे में बताया वो तो बहुत ही जर्नलाइज किस्म के हैं कि आखिरी जमाना जब मेरा बेटा जाहिर होगा, लोग नमाजों को जाय करेंगे, जकात के माल को खा जाया करेंगे, वालिदैन की बेहतरामी करेंगे, बीवियों की इताअत करेंगे, गाने बजाने की महफिलें सजाएंगे, वो मौला के कई खुतबात स्पेशल मौला उसमें भी ये कि हाथ पकड़ के कूफे के बाहर ले गए। दूसरी जो रिवायत है कि मौला ने कहा कि मैं कहाँ दफनूंगा, मौला ने हाथ पकड़ा कुमैल का, कूफे के बाहर ले गए। यहां आके दो रिवायतें एक हो गई, कूफे के बाहर, शहर के बाहर, सिटी खत्म हो गया, जंगल आ गया, वीराना आ गया, सहरा आ गया, डेजर्ट आ गया, वहां पे मौला ने ले जाके खड़ा किया और कहा कुमैल यहां पे तुम्हें दफन किया जाएगा। कुमैल ने अफसोस के आलम में कहा मौला मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तो वहां दफन हूं कि जहां पे आप दफन होंगे। अब कुमैल के जहन में ये कि मौला कूफे में रहते हैं, शहर कूफे में है, सिटी कूफा है, मौला अगर दुनिया से गुजरे, शहीद हुए तो वहीं दफन होंगे, ये तो शहर के बाहर एक जंगल, एक वीराना, एक डेजर्ट है। मौला ने कहा कुमैल मेरी कब्र भी यहीं पे बनेगी। आज कुमैल की कब्र कहाँ है? कूफे के उस महल्ले का नाम है हन्नाना, वहां मस्जिद हन्नाना भी है, कुमैल का रोजा भी। डिस्टेंस आपको मालूम है, आप में से तो हर आदमी रिसेंट जियारत में गया। अगर ये पैनाडामिक ना होता तो कितने लोग फर्स्ट अचरे में भी यही जाफरी सेंटर अटलांटा के मोमिनीन करबला में होते। तो मस्जिद हनाना से कुमैल का रोजा तो वॉकिंग डिस्टेंस है, एक ही इलाका है, तो वो नजफ है और मौला भी नजफ में दफन है। तो कुमैल ने अफसोस के साथ कहा मौला तो मैं तो ये चाह रहा था जहां आप दफन है वहां मैं दफन हूं। मौला ने कहा कि कुमैल मैं भी इसी जगह दफन होऊंगा, यानी मेरी कब्र भी नजफ में बनेगी, कूफे में नहीं। और आए कुमैल फिर वक्त गुजरेगा, ये पूरा जंगल अभी वीराना डेजर्ट नजर आ रहा है ना, वक्त गुजर जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां तुम्हारी कब्र के चारों तरफ बहुत ही मजबूत किस्म की इमारतें बनेंगी, बिल्डिंग। अब आजकल तो ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है या कंक्रीट या स्टील, तो जिस जमाने की मौला बात कर रहे हैं उस वक्त तो टूटे फूटे मकान बनते थे, कहा कुमैल बहुत ही मजबूत किस्म की, सॉलिड किस्म की बिल्डिंग बनेगी और उनमें हर एक में एक शैतान आके बैठेगा जिसकी निशानी घर की छत पे लगाई जाएगी, वह युसम्मा बे एरियल। एक जमाने में मैं इस रिवायत में लफ्ज एंटीना पढ़ता था, लेकिन बाद में जब मैंने ओरिजिनल किताब चेक की, वो मैंने अपने उस्ताद से सुना था, ये मैंने खुद किताब चेक की जाके, तो उसमें लफ्ज एरियल, एरियल एंटीना एक ही चीज होगी। हर घर में एक शैतान आके बैठ जाएगा और उसकी निशानी उस घर के ऊपर लगाई जाएगी, साइन ऑफ शैतान, जिसको उस वक्त के लोग एरियल कहेंगे या एंटीना कहेंगे। अच्छा, अब ये कुमैल के चारों तरफ, कुमैल के कब्र के चारों तरफ जो आज आपको एक बिल्डिंगें और इमारतें और मकानात नजर आते हैं, कब की बात? 1960s में, तब वो बिल्कुल जंगल था, वीराना था, कोई बस्ती आबादी नहीं थी। उसके बाद फिर वहां टाउन प्लानिंग हुई और मकान बनाए गए, 60s की बात कर रहा हूं, और रिवायत है 1400 साल पुरानी। दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था कि उस जगह पे मकानात बने, नजफ आबाद हो गया था। नजफ से मतलब यह कि जहां मौला का रोजा, लेकिन कुमैल का रोजा स्टिल बहुत दूर था। मेरे एक उस्ताद 1955 में नजफ अशरफ के हौजा इल्मिया में उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे, और वो भी बताते हैं कि वो वीराना सा था, रोजा था कुमैल का, जियारत के लिए जाते थे वो, लेकिन कुछ भी नहीं था वहां, एक आध टूटा फूटा इक्का दुक्का कोई मकान है तो नहीं। फिर इमाम ने कहा कि सुनो, कुछ अरसा गुजरेगा तो हर घर के अंदर मिसबाह, कल मिसबाह, चिराग की तरह से एक चीज आएगी, जिसकी वजह से घर में बैठे हुए आदमी को पता चल जाएगा कि बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जो लैंप होता है, चिराग होता है, उसका काम है ना अंधेरे को दूर करना, आदमी को रास्ता दिखाना। पहले जमाने में तो लोग सड़कों पे भी जाते थे, हाथ में चिराग लेके जाते थे, मोमबत्ती लेके जाते थे, तो नजर आ जाता था कौन है, रुकावट क्या है। कहा ये घर में बैठेंगे, एक ऐसा चिराग होगा कि इनको घर के बाहर का पता चलेगा। आज हम इसी को सीसीटीवी और पता नहीं क्या कहते हैं। और कुमैल फिर हर घर के अंदर एक ऐसी चीज आएगी जिसके अंदर इंसान मशरक में बैठ के मगरिब को देखेगा, मगरिब में बैठ के मशरक को देखेगा, खाली देखेगा नहीं, मशरक वाला मगरिब वाले से बातें करेगा, मगरिब वाला मशरक वाले से बातें करेगा। अब जनाब कुमैल का रोजा जहां पे आज है, उसके अतराफ में जो घर हैं, मुझे उन घर वालों के बारे में तो नहीं पता कौन लोग हैं, लेकिन वहां घरों में गए बगैर आपको यकीन के साथ बताता हूं कि यकीनन उन घरों के अंदर ये आईफोन वगैरह होंगे, और ये व्हाट्सएप और ये सारी चीजें चल रही होंगी। मगरिब वाला मशरक वाले को देख भी रहा है और बातें भी कर रहा। जो चीज आज आपके बच्चों के लिए जस्ट लाइक ए टॉय है, 1400 साल पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल होता था। चुनांचे एक ऐसी हदीस थी जिसे उलमा ने किताबों में लिखना भी छोड़ दिया और बयान भी नहीं किया, कि ऐसी हदीस जिसका कोई ताल्लुक ना हमारे उसूल दीन से है, ना फुरूए दीन से है, ना दीन के बड़े मसले से है, सुन के लोग मजाक उड़ाएंगे, नौजवान जो है उनका ईमान शेकी हो जाएगा, तो उसको बयान करने की कोई जरूरत नहीं। यह भी एक बहुत अहम मसला। आलिम किसे कहते हैं? मेरे एक उस्ताद ने एक मरतबा जो हौजा इल्मिया नजफ से पढ़ के आए थे, ये सवाल किया, हमारे जितने क्लास फेलो थे इंक्लूडिंग मी, जो इल्म रखता हो, जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, कहा नहीं, आलिम उसे नहीं कहते, आलिम उसे कहते हैं कि जिसको ये पता हो कि कितना इल्म पब्लिक के सामने जाहिर करना और कितने इल्म को छुपाना। वरना आजकल का तो जमाना ऐसा है ना कि सारी चीजें गूगल पे मौजूद हैं, सारी चीजें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, वहां से तो एक बच्चा भी एक बटन दबा के सारी इंफॉर्मेशन ले ले। लेकिन क्या चीज लोगों के सामने पेश करना है और क्या चीज को छुपा के रखना, ये आजकल ये जो व्हाट्सएप और यूट्यूब है उसने यही गजब ढाया। आपको बड़े बड़े उलमा नजर आएंगे, लिबास उलमा में है, हौजे में टाइम भी गुजार कर आए हैं, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं हो सकता होता हो रहा है कि क्या चीज यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है और क्या चीज है हक, लेकिन फिलहाल उसको छुपा के रखना, ये एक बहुत अहम मसला है। मैं जरा बीच में इधर से उधर चला जाता हूं, आज तो मेरा पूरा इरादा था कि ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हो गया, वापिस आता हूं। तब ये 1400 साल पहले की एक ऐसी हदीस है कि जिसको आज एक बच्चा सुनकर कहेगा कि इसमें क्या खास बात है, ये तो एक आम सी बात है। 1400 साल पहले के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर और साइंटिस्ट हंसते थे कि ये कैसे पॉसिबल, मशरक का आदमी मगरिब के आदमी से बातें करे। जाफरी सेंटर अटलांटा में तो मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि मैं कई सालों से जा रहा हूं, कि लोग काफी तवज्जो से और अटेंटिव होकर मेरी मजलिस सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को ये मजलिस समझ में ही नहीं आती है कि पढ़ा क्या जा रहा। वो कहते हैं क्या इसको मजलिस कहते हैं? मजलिस तो ऐसी है कि इतने नारे तो लग रहे हो कि जाफरी सेंटर की छत हिलने लगे और डर लगे कि कहीं अब ये छत गिर तो ना जाए। तो वहां पे ये हो रहा है कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, खवातीन मर्द तो सामने होते हैं, जरा हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अब मर्दों में भी हिम्मत हो गई है। खवातीन पर्दे के पीछे आईफोन उठाया, जमालपुर ताजपुर में अपनी नंद को या अपनी भावज को फोन किया, भाई आज क्या पका रही है और कैसे पका रही है और कितने लोगों के, या मजलिस हो रही है, वहां उनकी बातें चल रही, इतना इजी हो गया। कहने का मकसद ये, लेकिन ये सारी निशानियों का मतलब ये नहीं है कि हम सुने मजा ले कहें वाह वाह क्या कहना मेरे मौला के इल्म का। हर आदमी जानता है बाबे मदीनतुल इल्म है, यह देखना है कि फिर हमने कितनी इसके हिसाब से तैयारी की। याद रखिए ज़हूर इमाम की निशानियां जो है उसमें भी है, और इसके साथ एक और सब्जेक्ट इसके साथ साथ है उसमें, यही एक मैसेज है। और आज के मजलिस में मेरा मकसद वही मैसेज देना था कि ज़हूर इमाम की जो निशानियां, अब ज्यादा तो जो बातें रह गई हैं वो आशूरे के बाद की मजलिस में आएंगी। कल शबे आशूर है, शायद इस मौजू पे मैं कल बात कर भी ना सकूं, लेकिन ये ज़हूर इमाम की निशानियां ये खाली एक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, खाली इंटरेस्ट के लिए नहीं, यह है प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ एक चीज और, बाज लोगों को ज़हूर इमाम की इतनी बेचैनी होती है, सो ईगर, कि वो कहते हैं कि निशानी उशानी छोड़िए कि इमाम कब आएंगे, कब वो टाइम क्या होगा, उसके लिए क्या साइन हो के छोड़े। मौलाना कोई ऐसा तरीका बताइए कि इमाम जब आए आए अभी हम हमारी इमाम से मुलाकात हो जाए। वो तो जब इमाम जाहिर होंगे तो सारी दुनिया इमाम के चेहरे की जियारत करेगी, लेकिन इतना वेट हमसे नहीं हो रहा। हमें तो ये बताइए कि अभी हम इमाम की जियारत कर सकें। और चूंकि हमारे पास बहुत सारे ऑथेंटिक और इंतहाई ट्रस्ट वर्दी ओलमा और मुश्तहदीन के वाकयात हैं कि उन्होंने इमाम से मुलाकात की, तब कम से कम ये तो कंफर्म है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका एक गोल्डन रूल भी याद रखी, बड़े बड़े मराजे ने लिखा, जो इमाम से मुलाकात करता है वो कभी बताएगा नहीं, जो बताता फिर रहा है उसकी इमाम से मुलाकात नहीं हुई। तो वो जो इतने सारे वाकयात आपको मिलते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि उन उलमा को भी नहीं पता होता था कि ये इमाम है जिनसे हम मिल रहे हैं, और अगर किसी को पता होता था तो उसने अपनी जिंदगी में किसी को ये नहीं बताया, जैसे मुकद्दस अरदबेली हैं या सैयद मेहदी है बहरुल उलूम। और कल आपने सुना शेख मुफीद जैसा अजीम आलिम, लेकिन इमाम से मुलाकात हुई और उनको पता ही नहीं चला कि ये इमाम। तो गर्ज ये कि अगर आपके चारों तरफ कभी कोई ऐसा मर्द या औरत आए कहे कि मैं इमाम से मिलता हूं, मेरी मुलाकात होती रहती है, तो इसका मतलब यह है कि वो गलत बयानी कर रहा। लेकिन वो तो एक अलग चीज होगी, ये बात तो तय है ना कि इस जमाने में भी इमाम से मुलाकात होती है और हुई। तो एक तो ये वाकया, फिर दुआओं की किसी किताब में आप देखिए तो बहुत सारे आमाल भी दिए हैं कि अगर फुला अमल करोगे तो तुम्हारी इमाम से मुलाकात हो जाएगी। अब मैं वो वाले अमल नहीं बता रहा जिसके लिए आपको बड़ी जहमतें उठाना पड़े कि भाई 40 शबे बुध मस्जिद सहरा में जाओ या मस्जिद जमगरान में जाओ या दौरान हज अराफात के मैदान में हज तो मत करो, भाई चारों तरफ निगाह डालते रहो कि इन हाजियों में इमाम कौन नजर आ रहे हैं। ये नहीं, ऐसे अमाल भी हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए ये दुआ पढ़ के सो जाएं या खुला अमल अपने घर में करें तो इमाम से मुलाकात हो जाएगी, वो भी हमारे पास हैं। तो घर के ये दुआ तावीज अमल इतना ज्यादा नहीं है इस्लाम में जितना आजकल कुछ लोगों ने इसको बयान करना शुरू कर दिया। कल जो बात मैंने कही थी वो आधी सही भी है आधी गलत है, जो गलत आधी गलत बात है वो मैं कल कह चुका हूं, लेकिन आधी सही भी है कि जो वो पहले जमाने में लोग अपनी बच्चियों को कुरान तक पढ़ना नहीं सिखाते थे कि जी अगर इसने कुरान पढ़ लिया तो हर वक्त ये तिलावत में लग जाएगी या दुआओं में लग जाएगी और मुसल्ले पे बैठी हुई है, मसलन शौहर को इसकी जरूरत है और बच्चे को माँ चाहिए है लेकिन वो लगी हुई अपने अमल में। अब अगर वो लोग मना करें तो वो गुनाहगार के रोक रहे हो दुआ से, और अगर वो कहें कि नहीं भाई छोड़ो इजाजत दे उसको तो पूरे घर का निजाम डिस्टर्ब। इसलिए लड़की को ऐसा बनाओ ही नहीं ये जो पहले जमाने के लोग कहते थे। मैंने कहा ये आधी बात तो गलत है लेकिन आधी सही बात भी। आज पता नहीं हमारे बहुत सारे मर्द और औरतें ऐसे निकल आए जो समझ रहे हैं इस्लाम नाम ही इस बात का है कि हर वक्त 24 घंटे मुसल्ले पे बैठे रहो, ये लंबी लंबी दुआएं, ये लंबी लंबी तस्बीह, और समझते हैं कि इससे स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है या ये कि इतनी सारी दुआओं से अल्लाह खुश होता। हर चीज की एक लिमिट होती है, सारा साल शबे कदर नहीं है, एक शबे कदर एक वो रात है कि जहां पूरी रात को आपको अमल करना। अब अगर आप पूरे साल को शबे कदर बना दें, नमाज शब जैसी अहम तरीन इबादत के लिए रिकमेंडेशन है कि नींद पूरी करो फिर नमाज शब पढ़ो, और इसके अलावा ये तो जरा सा सब्जेक्ट हट जाएगा, लेकिन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, इस्लाम में और हिंदू मजहब में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, इस्लाम में और बुद्ध मजहब में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, और भी जो दूसरे मजहब है वो सब ये कहते हैं कि अगर अल्लाह से क्लोज होना है तो दुनिया की चीजों को कम से कम करो और ज्यादा जाके इबादत की जगह पे बैठ जाओ, और इस्लाम कहता है कि नहीं, खाली तस्बीह पढ़ने से अल्लाह के से क्लोज नहीं होते, अपनी बीवी को मुस्कुरा के देख कर बात करो इससे भी आदमी अल्लाह से क्लोज होता। अपने शौहर को एक मतलब गिलास पानी पिला दो इससे भी अल्लाह खुश होता, खुश नहीं होता क्लोज होते हो अल्लाह के। शादी के मौके पे तो आप अक्सर सुनते कि बगैर शादी वाले की 70 रकत नमाज से ज्यादा सवाब शादी वाले की 2 रकत नमाज का, लेकिन ये और भी क्योंकि आजकल जरा सा एक्सट्रीमिज्म आ गया है हमारे यहां, जो लोग दीन से दूर हैं तो ऐसे है कि वो फर्ज नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं, और जो दीन के करीब है तो इतने लंबे लंबे डेली आमाल, मफातिहुल जिनान के आखिर में मौला की एक डांट है। एक आदमी को देखा बहुत लंबी लंबी दुआएं पढ़ रहा है, इमाम ने उससे डांटा ये इतनी लंबी दुआओं का क्या फायदा और जरूरत, जो अल्लाह लंबी दुआ सुनता है वही अल्लाह शॉर्ट दुआ भी सुनता है। खैर तो ये बीच में बात इसलिए आ गई कि हमें और आपको तो इस तरह से बनाया गया कि ये अपनी जिम्मेदारियां अदा कर लो, वालिदैन की खिदमत, शौहर की खिदमत, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, ये भी एक इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन वक्त नहीं रहा, आज तो पता नहीं मैं कहां से कहां चला गया। खैर ये तो रोज आना की एक ट्रेजेडी, वापस आता हूं असल टॉपिक पर कि जी वो इमाम जमाना से मुलाकात के कुछ अमाल दुआएं भी, लेकिन मसाला यह नहीं है कि इमाम की जियारत हमको करना है, दिल तड़प रहा है, जहूर के बाद तो हर एक को जियारत होगी, हमने कहा वो जहूर तो पता नहीं कब हो रहा है, साइंस ऑफ जहूर तो पता नहीं कब पूरी होंगी, हम हमारी अभी क्यों ना मुलाकात हो जाए। बार बार रिवायतों में कहा गया कि देखो इमाम से मिलना इतना अहम नहीं है, इमाम को खुश करना ज्यादा अहम। रसूलुल्लाह से मिलने वाले कितने सारे थे, रसूल उनमें से खुश कितनों से थे, और जो रसूल खुदा से कभी नहीं मिला उवैसे करानी, क्योंकि उवैस का वाकया हर आदमी जानता है तो खाली इशारा कर देना काफी, उससे रसूल इतने खुश हैं कि अपना स्पेशल सलाम उसको भिजवा रहे हैं। एक मदीने के मुनाफिकीन जो रोजाना सुबह शाम जाके रसूल को सलाम करते हैं, और एक वो जिसको खुद पैगंबर ने अपना सलाम भिजवाया, ये वैसे करनी का स्टेटस कि मौला जब जंगे सिफीन के लिए निकल रहे हैं पूरा लश्कर तैयार है, लोगों ने कहा चले का ठहर जाओ अभी मैं एक सिपाही का इंतजार कर रहा हूं, जब तक कि वो नहीं आएगा मैं जंग करने नहीं जाऊंगा, सारी दुनिया इमाम का इंतजार करे, और वैसे करनी वो है जिसका इंतजार इमाम करे। और मदीने पहुंचकर रसूल की जियारत किए बगैर आ गया कि माने मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं दी। खुश राजी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम को खुश और राजी करें, चाहे कभी मुलाकात ना हो। यह नहीं है कि इमाम से हमारी मुलाकात हो और इमाम से मिले तो चाहे इमाम हमसे नाराज ही क्यों ना हो। क्या रसूलुल्लाह का वाकया अभी आपने मोबाइले में नहीं सुना कि जब ये नजरान के ईसाई आए थे पैगंबर को सलाम किया, पैगंबर ने उनका उनको देखकर अपना चेहरा हटा लिया, मुंह फेर लिया, गोल्ड के जेवर और पता नहीं क्या कुछ पहनकर आए। क्या वो दाढ़ी शेव करने वाले का वाकया नहीं सुना, उसे देख के पैगंबर ने मुंह फेर लिया, वो आ भी गया सलाम भी कर रहा है, पहुंच भी गया, जियारत का मौका भी मिल रहा है, वो पैगंबर को देख रहा है, पैगंबर उसको देखने को तैयार नहीं। कमाल तो वो है ना कि इमाम हमसे राजी और खुश हो, तो जो लोगों को तो साइन ऑफ जुहूर से भी हमको इंटरेस्ट इसीलिए है ना कि इमाम जाहिर होंगे हम इमाम की जियारत करें, और जो लोग ज्यादा जल्दी करते कहते अभी हमें इमाम की जियारत मिल जाए। इमाम को राजी रखने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको इमाम की जियारत मिले अभी और चाहे ना मिले, और इसके लिए वही बात हो रही है कि अपने आपको आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना, अपने आप में तब्दीली लाना, अपनी फैमिली में तब्दीली लाना। हमारे यहां चंद वाजिबात पे अमल करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता, चंद हराम चीजों से अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता, करबला का मैसेज ये होता है कि दीन तो इतना कीमती है कि उसके खातिर इंसान अपने जिगर का टुकड़ा भी कुर्बान कर देता। गीबतें, तोहमतें, एलिगेशन, इत्तेहामात, हसद, जेलेसी, एरोगेंस, घमंड और गुरूर, यह आपको उन लोगों में भी नजर आता है जो बड़े पक्के किस्म के नमाजी होते हैं। ये आपको उनमें भी नजर आता है जो हर साल दौड़ दौड़ के हज करने जाते हैं। यह आपको उनमें भी नजर आता है जो साल में 3 मरतबा 4 मरतबा करबला की जियारत के लिए जाके जरिए इमाम को पकड़ लेते हैं। लेकिन इमाम मुंह फेर लेते हैं। हज के लिए भी रिवायत है, जियारत के लिए भी रिवायत। जरा अंदाजा करें, जिस रबाब ने अपना असगर इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, अगर वो ये देखे कि हमारी औरतों और मर्दों की निगाह में इस्लाम के अहकाम इतने ज्यादा बेकीमत, जैसा कि मैंने बार बार अर्ज किया कि जो लंबी लंबी दुआओं से और आमाल से इस्लाम ने रोका है, का कोई फायदा नहीं उस दुआ का कि जिसमें तुम्हारा दिल इधर उधर जाने लगे। कम इबादत करो जोश के साथ, खुशी के साथ। अभी आशूरे के अमाल तो आप अंजाम देंगे, लेकिन आपको पता है ना कि अमाल आशूरा अगर आप डेली भी करें तो इसके बहुत बेनिफिट है। आयतुल्लाह सिसानी का फतवा मेरे पास मौजूद, मुझे 100 मरतबा लानत है, 100 मरतबा दुरूद है, अगर वो खाली एक दफा हम पढ़े तो काफी है, का बिल्कुल काफी। और इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं, खास तौर पर आज मुझे दो जुमले ज्यादा नहीं, लेडीज से बात करना, घर को संभालें, घर को सही करें। करबला में एक बहुत बड़ा मैसेज आका हुसैन ने इन बीबियों को अपने साथ ले जाकर यह दिया था कि औरत का रोल भी इस्लाम की खिदमत के लिए कितना अहम होता। और फिर खास तौर पर उसमें जब हमारे सामने उस रबाब का तस्किरा आता जिसके लिए आका हुसैन ने एक ऐसा जुमला कहा जो किसी भी रिलीजियस आदमी की जबान पे हमको अच्छा नहीं लगता। हुसैन तो खुद रिलीजन है, दीन अस्त हुसैन। एक इमाम मासूम फरमाते हैं जिस घर में रबाब ना हो वहां पे मेरा दिल नहीं लगता। ये वो हुसैन कह रहे हैं कि करबला के वाकये के बाद किसी ने सवाल किया था मौला सज्जाद से कि मौला आपके बाबा की औलादें बहुत कम है। देखिए उस वक्त तक तो ये तीन इमाम हुए थे, मौला अली की औलादें कितनी, आका हसन की औलादें कितनी एज कंपेयर टू दोस्त, इमाम हुसैन की औलादें बहुत कम है। रीजन क्या? आका सज्जाद का जवाब भी आपको पता है, का तुझे इस पर हैरत कि सिर्फ ये तीन बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और मुझे तो इस पर हैरत है कि इतनी भी कैसे हो गई। मेरा बाबा इबादत खुदा का इतना शौकीन है, कल की रात शब आशूर है जो हुसैन ने इबादत के लिए भी ली है। मेरा बाबा इबादत खुदा का इतना शौकीन था कि इतना वक्त भी ना था कि अपने घर में जाएं और बीवियों को वो वक्त दें। क्योंकि आका हुसैन की साथ है ना, तो मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, कुछ जुमले शायद मैं वाजे नहीं कर पाए। यानी आका हुसैन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि शहजादी रबाब का जो इतना हाई स्टेटस बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि जैसे बहुत सारे शोहरों को अपनी बीवियों से मोहब्बत हो जाती, या कुछ लोगों को दौलत से मोहब्बत है, कुछ की तवज्जो औरतों की तरफ है। आका जैसा मुकद्दस का लफ्ज भी आका के लिए तौहीन है, वही वो मासूम इमाम है। लेकिन बाद रिवायतों में ये लफ्ज आया कि मासूमीन में जोहद में आका हुसैन एक मिसाल, रबाब ने कोई ऐसी खिदमत की है हुसैन कि हुसैन कहते हैं उस घर में मेरा दिल नहीं लगता जिस घर के अंदर रबाब। और वो रबाब ही करबला में इसलिए सबसे ज्यादा परेशान थी कि मेरे पास करबला के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए कोई औलाद ही नहीं। फरवा के पास तो 13 साल का कासिम है ना, लैला के पास तो 18 साल का अली अकबर है ना। इस मजमे में मौजूद मोमिनीन और मोमिनात में से जिनका औलाद का कोई मसला दिल में, ये मसला रखें और ये मजलिस सुने। जिस मजलिस में अली असगर के मसाए बयान होते हैं, औलाद के हवाले से हर परेशानी दूर हो जाती। एक ऐसी मां के मसाए आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने वो बेटा कुर्बान किया है कि गैर मुस्लिमों ने भी अगर मरसिए लिखे तो अली असगर के मरसिए लिखे। और अब आप परेशान हैं कि मेरे पास करबला के जिहाद के लिए कोई कुर्बानी ही नहीं, और हुसैन ये बता रहे हैं कि करबला की सबसे बड़ी कुर्बानी तो रबाब ही का बेटा दे लो। क्योंकि आप में से तकरीबन हर एक ने एक अजीम नाम सुना, खतीब आजम मरहूम मौलाना गुलाम अस्करी साहब आलिल्लाह मकामहू, आपके शहरों में भी आते थे, अहमदाबाद में भी आते थे, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस मजलिस के अंदर खवातीन व हजरात जिन्होंने बराह रास्त उनकी मजलिस सुनी होगी। वो जनाब अली असगर के मसाइब में एक टुकड़ा ये बयान करते थे जहां से मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं कि 28 रजब को जब हुसैन का काफिला मदीने से चलने लगा और सवारियां आ गईं और हुसैन ने पैगाम भेजा कि जैनब बीबियों से कहो कि अब अपनी अपनी सवारी पे बैठे, हमको सूरज डूबने से पहले मदीने से निकल जाना। अब ये सारी बीबियां तैयार हो रही हैं सवारियों पर बैठने के लिए, हुसैन की फातिमा सुगरा आगे आई। अब तक फातिमा सुगरा को उम्मीद थी कि शायद बाबा मुझे साथ ले जाए, लेकिन अब देखा कि अब तो कोई इम्कान नहीं। तो सुगरा करीब आई बीबियों के और रबाब के पास पहुंच के कहा कि अम्मा जरा एक लम्हे के लिए मेरे असगर भैया को तो मेरी गोद में दे दी। अभी असगर कितने एज क्या है, 3 वीक के भी नहीं। बास किताबों में लिखा है 10 रजब को विलादत हुई है तो 28 रजब को 18 दिन के हैं खाली। अच्छा, इस दौरान सुगरा जो थी वो बीमार रही। जो बीमार होता है तो न्यू बॉर्न को जरा सा उससे बचाया जाता है, वो खुद ही एहतियात करता। तो सुगरा अब तक असगर को सही मानों में ना देख सकी है ना गोद में ले सकी है, बहन है और भाई। अब जब ये जा ही रहे, अम्मा जरा एक लम्हे के लिए असगर को मेरी गोद में दे दीजिए, रबाब ने असगर को सुगरा की गोद में दिया। सुगरा ने असगर को देखा, कान पे मुंह रख के कहा, असगर भैया सब मुझे छोड़ के जा रहे, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? खुदा मालूम किस तरह सुगरा के दिल से बात निकली और असगर के दिल में उतर गई कि अब असगर ने इस तरह सुगरा की गोद में मुंह छुपा लिया कि थोड़ी देर के बाद रबाब ने कहा, असगर बेटा मेरी गोद में आ जा, मैं अपनी सवारी की जानिब जा रहा हूं, मैं अपनी सवारी की जानिब जा रही हूं, असगर देखने को तैयार नहीं। हुसैन का दूसरा पैगाम आया, जैनब बहन बीवी अब तक बाहर नहीं निकली, देर हो रही। अब दूसरी बीवी आगे बढ़ी, उम्मे फरवा, जो कुछ रिवायतों में है कि असगर की सगी खाला, असगर बेटा मेरी गोद में आ जा। अरे उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, असगर बेटा मेरी गोद में आ जा। फातिमा कुबरा आगे बढ़ी, असगर भैया मेरी गोद में आ जा। लेकिन असगर ऐसा मुंह फेर के मुंह छुपाए हुए सुगरा की गोद में है कि जब तीसरा पैगाम हुसैन का आया तो अब सानिया जहरा जैनब कुबरा खुद आगे बढ़ती हैं और आकर कहती हैं, असगर बेटा हमें देर हो रही है, मेरी गोद में आ जा। लेकिन आज असगर फूफी जैनब की बात सुन के भी एक मर्तबा उसी तरह मुंह छुपाए पड़ा है। आखिर चौथी मर्तबा हुसैन का पैगाम नहीं आया, खुद मेरा आका हुसैन घर में आ गया। जैनब बहन क्या बात है? जैनब ने कहा, भैया क्या करूं, असगर नहीं मानता है। हुसैन ने जब ये सुना करीब आए, एक जुमला सुगरा ने असगर से कहा था, एक जुमला हुसैन ने असगर से कहा। एक बार असगर के कानों के करीब मुंह ले जाकर कहा, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से कभी अलग ना करता, लेकिन जो जिहाद करबला में करने जा रहा हूं उसमें मुझे तेरी कुर्बानी की जरूरत भी है, तेरे बगैर मेरा जिहाद कामयाब नहीं हो सकता। वह इतना सुनना था 18 दिन का असगर एक बार तड़प के सोरा की गोद से हुसैन की गोद में आ गया और हुसैन करबला पहुंच गए। आशूर का दिन आ गया, शहादतों पे शहादतें होने लगी। आखिर में वो वक्त आ गया कि हाय मेरा मौला अकेला रह गया। अब्बास मारे गए, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, औनो मोहम्मद मारे गए, औलाद अकील मारी गई, औलाद जाफर तैयार शहीद हो गए, कोई नहीं। हुसैन टीले पे जाते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, आवाज देते हैं, हल में नासिरिन यंसुरुना। अरे है इस दुनिया में कोई जो हुसैन की मदद को आए? हल मिन जाब बिन यजुब अन हरम रसूलिल्लाह। अरे कोई है जो रसूल के हरम का दिफा करे? कहीं से जवाब तो ना आया। एक बार खेमे से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। میرا آقا، میرا مولا ٹیلے سے اتر کے خیمہ میں گیا، پوچھا زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا ادھر تو نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا، شاید بابا کو یاد دلا رہا ہو، بابا مدینے سے وعدہ کر کے لایا تھا کربلا کے جہاد میں اصغر کی ضرورت ہوگی، ابھی اصغر زندہ ہے، جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصر نہ کہنا، تیرا ایک ناصر، تیرا ایک مددگار یہاں پہ موجود ہے۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، دھوپ بہت تیز ہے، اب آ کے دامن میں اصغر کو چھپایا، فوج یزیدی کہہ رہی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے فیصلہ کرائیں گے، لیکن جب ٹیلے پہ جا کے ابا کا دامن ہٹایا، ششماہا حسین کے ہاتھوں میں ہے، قرآن ناطق کا ایک پارا، اور حسین کہہ رہے کہ اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، تم صاحب اولاد، اگر پانی ہو، اگر پانی ہو اسے لا کے چند قطرے پانی کے دے دو، اور جب کوئی جواب نہ آیا، حسین نے اصغر سے کہا اصغر تم تو خود حجت خدا کے پوتے ہو، تم خود ہی اپنی حجت تمام کرو۔ ننے اصغر نے اپنی ننی سی زبان سوکھے ہوٹوں پہ پھیرنا شروع کی، یہ اس طرح سے زبان پھیری جا رہی ہے کہ پورے لشکر یزید میں کہرام بپا ہو گیا، ارے یزیدی تک رو دیے، یزیدیوں کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایسا جہاد تو اکبر نے بھی نہیں کیا، ایسا جہاد تو عباس نے بھی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد گھبرا گیا، پریشان ہوتا ہے، ہر ملا کے قریب آتا ہے، کہتا ہے ہر ملا اگر کچھ دیر اور اصغر اسی طرح سے میری فوج کے سامنے رہا تو بغاوت آ جائے گی، اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اور ہر ملا ایک بار اپنے تیروں کو دیکھتا ہے، ایک بھال کا تیر بھی تھا جو عرب میں ایک آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تین بھال کا تیر بھی تھا جو کسی درخت میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارے ششماہ علی اصغر کا، 6 مہینے کے بچے کا وہ نازک سا گلا، اور 3 بھال کا وہ تیر جو گھوڑے کی گردن توڑے، 3 بھال کا وہ تیر جو کسی درخت میں سوراخ کرے۔ ایک مرتبہ ہر ملا نے 3 بھال کا تیر نکالا، کمان میں لگایا، اور ایک مرتبہ تیر چلانا چاہتے ہیں کہ ہر ملا کے ہاتھ کانپ گئے، تیر و کمان ہاتھ سے گر پڑے، دوبارہ کوشش کی، ارے دوبارہ ناکام رہا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ناکام رہا، اس کا دوست سنان قریب آتا ہے اور کہتا ہے ہر ملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا، عجیب جواب دیا، کہا کہ نہیں سنان، بچے کی بات نہیں ہے، ادھر میں کمان کھینچ کے تیر چلانا چاہتا ہوں، ادھر خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی، ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے ششماہے کو کیسے تیر ماروں۔ سنان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، 3 بھال کا تیر چلا، اصغر کے گلے میں بیوس ہو گیا، ہائے اصغر کا ننا سا گلا، 3 بھال کا تیر اس ننے سے گلے میں اس طرح لگا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اصغر کا پورا گلا چھت گیا، خون کا فوارہ بلند ہونے والا ہے، حسین یہ تیر کھینچ کے نکالنا چاہتی، یا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا چاہی تھی، یا اصغر کے گلے سے یہ تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ ادھر حسین نے تیر نکالنا چاہا، 6 مہینے کا بچہ ہے نا، بہت چھوٹا بچہ ہے نا، یہ کمسن معصوم کربلا کا ننا مجاہد، حسین نے ادھر تیر نکالنا چاہا، بچہ تڑپ اٹھا۔ حسین نے کہا اصغر مجھے پتا ہے تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن تو حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب جو حسین نے تیر نکالا، بچہ تڑپا تو نہیں، مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، اور ایک بار خون کا فوارہ بلند ہوا، حسین نے اپنا چلو بڑھایا، یہ خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، ایک بار آسمان تڑپ اٹھا، آقا یہ بے گناہ خون، یہ معصوم خون، ایک قطرہ بھی ادھر نہ آئے، ورنہ کبھی بارش पूछना होगी। जमीन पे फेंकना चाहा, अरे जमीन कांप उठी, आका ये खून यहां ना आने पाए, कयामत तक एक कतरा, कयामत तक कोई सब्जा ना उगेगा। अरे हुसैन हैरान और परेशान खड़े हैं, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। और आखिर में मेरे मौला ने चुल्लू में खून है, वही खून अपने चेहरे पे मला, जब नाना रसूल खुदा के पास जाऊंगा तो इस हालत में जाऊंगा, नाना जरा देख मेरे असगर का खून किस तरह से मेरे चेहरे पर है। और फिर हुसैन एक बार असगर का लाशा लेके चले, किस तरह से ये लाशा माँ को दिखाए, बखेमे में गए, रबाब के सामने असगर को रखा, हाय वो माँ जिसका चश्मा मारा गया, रबाब ने देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, या बुनैया मिसलो का यूनहर, अरे असगर बेटा 6 महीने का तो जानवर भी जबा नहीं होता, हाय मेरा चश्मा किस तरह 3 भाल के तीर से मर। अजरकुम अल्लाह, ये खून ना हक, क्या आसमान भी कांप उठा, जमीन भी थर्रा उठी। फातिमा जहरा ने अपने पोते असगर के मसाइब को किस तरह सुना होगा, अरे आका अब्बास ने किस तरह से अपने भतीजे की शहादत को सुना होगा, मैं ना रहा तो असगर किस तरह मारा गया। परवरदिगारा तुझे मेरे मजलूम आका सरकार सैयदु शुहदा के इस इम्तिहान का वास्ता, जो अंबिया भी नहीं दे सकते, जो औसिया भी नहीं दे सकते, मसाइब अली असगर सुनने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा। खुदावंदा इस खून नाहक का वास्ता साहिबान ईमान की तमाम हाजतों को पूरा फरमा, लेकिन इसी खून नाहक का वास्ता अगर तेरे दीन को जरूरत पड़े तो हर बाप को, हर माँ को इसी तरह से अपनी औलाद कुर्बान कर देने का जज्बा अता फरमा। और इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल।